صحابہ اور علماء امت میں اس کے بارے میں مختلف آرا ہیں، جس میں سے ایک رائے کیا ہے، قرض دینے والے پر قرض کی زکوٰۃ نہیں. کیسے؟ لئی صفد دئینی زکوٰۃ، قرض میں زکوٰۃ نہیں. یہی بات عائشہ اور ابن عمر سے روایت نقل کی گئی. اس قول کی دلیل یہ کہ قرض دیے جانے کی وجہ سے قرض خواہ کے لیے اس مال میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا، اس لیے قرض میں دیا ہوا مال غیر تجارتی سامان کی مانند ہے جس پر زکوٰۃ نہیں. بات سمجھ گئے؟ ایک رائے کیا کہ نہیں دے گا، یعنی نہ وہ دے گا جس نے لیا ہوا ہے اور نہ یہ دے گا جس کا مال تھا لیکن دیا ہوا ہے. دلیل کیا کہتے ہیں کہ اس مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. رائٹ، اب اس پہ تبصرہ پڑھیے گا. مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے. قرض دینا عام حالت میں مستحب ہے. قرض دینے والا رضا کارانہ یعنی والنٹیئرلی طور پر قرض دے کر اپنے مال کو اضافے سے روکتا ہے. یہ ایک پسندیدہ کام کی بنا پر فرض کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بندے کا بندے سے معاملہ ہے، جبکہ زکوٰۃ اللہ سے بندے کا معاملہ ہے. قرض دینے والے کا قرض کی بنا پر ثواب کی خاطر اپنے مال میں اضافے کو روکنا خود اس کا اپنا انتخاب ہے. اگر وہ مال میں اضافے کے رکنے کو برداشت نہیں کر سکتا تو قرض ہی نہ دے، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو تو نہ چھوڑے. اس پر حضرت ابن عمر سے بھی قرض دینے والے کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی گئی. امام ابن حزم نے نافع سے روایت نقل کی ابن عمر کی، کیا بلا شبہ وہ یتیم کے مال کے نگہبان بنے تو وہ اس کے مال میں بطور قرضہ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی نظر میں اس کے مال کی زیادہ حفاظت والی شکل تھی اور وہ اس کی زکوٰۃ یتیم ہی کے مال سے نکالتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جس کا مال تھا اس کے مال سے نکالتے تھے. اب دوسری رائے کیا ہے کہ قرض کی دو قسمیں. پہلی قسم یہ کہ مقروض اپنے ذمے قرض کا اعتراف کرتا ہے اور قرض کی واپسی کی طاقت بھی رکھتا ہے. دوسری قسم یہ کہ قرض کسی ایسے شخص کے ذمے ہو جو نادار ہو یا قرض کا اپنے ذمے ہونے کا انکار کرے یا ٹال مٹول کرنے والا ہو. ان دونوں کو سمجھیے. پہلی صورت کیا ہے کہ جس میں جس نے دیا ہوا ہے اس کو ملنے کی امید ہے، اور دوسری صورت کیا، جس نے دیا ہوا اس کو ملنے کی امید نہیں ہے. اس دوسری رائے کے مطابق ان دونوں قسموں کا حکم جدا جدا ہے، اور پھر دو قسموں کے قرض کے متعلق دوسری رائے والے علماء میں باہمی اختلاف ہے جس کی قدر تفصیل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی قسم کے قرض کا حکم. ایک رائے یہ کہ قرض خواہ پر اس قرض کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی لازم نہیں، بلکہ قرضہ ملنے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. پھر ایک کال کے مطابق صرف ایک سال کی، دوسرے کال کے مطابق گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ دوسرا کال حضرت علی اور بعض ائمہ سے نقل کیا گیا. اصحاب الرائے کا موقف بھی یہی ہے. دلیل، جب قرض کی رقم یا چیز ہی زکوٰۃ دینے والے کے پاس نہیں تو اس کی بنا پر زکوٰۃ واجب کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی بنا پر زکوٰۃ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی فرضیت کی اساس باہمی ہمدردی ہے، لیکن ادھار دینے والے کو ایسے مال کی زکوٰۃ دینے کا پابند کرنا جس سے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا باہمی ہمدردی کے خلاف ہے. تبصرہ، قرض دینے والے نے قرض دے کر جو کچھ بھی کیا عام حالات میں مستحب کے دائرے سے آگے نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ کی ہر سال ادائیگی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ. اپنی مرضی سے کیے ہوئے مستحب کام کی بنا پر قرض دینے والے کا قرض فرض کام کو معطل کرنا درست نہیں، واللہ اعلم. تو کیا رائے ہوئی؟ ہر سال دے گا. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا مال کسی دوسرے کے پاس رہا تب نہیں دیں گے، پھر آخری سال جب مال پیسہ واپس مل گیا تو اس سال دیں گے، تو یہ اس کے اگینسٹ بات آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں نا. آپ کی گاڑی تھی، دو گاڑیاں تھیں، آپ نے ایک رکھی، ایک دوسرے کو دے دی. آپ نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ گاڑی ہے تو آپ ہی کے نام پہ. کچھ بھی خرابی ہوتی ہے، بکتی ہے، پیسہ، نفع، نقصان آپ کو ہی ملتا ہے نا. تو لہٰذا صحیح بات کیا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا، جتنے سال بھی وہ قرض آپ کو واپس نہیں کر رہا، آپ ان سالوں کا بھی زکوٰۃ کا حساب کریں گے. ہاں یہ صورت ہے کہ آپ کے اس مال کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے پاس، اب کیا کریں پھر؟ وہ آگے آئے گی، لیکن میں یہاں اپنے لفظوں میں بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1,00,000 روپے تھا، میں نے پورے کا پورا دے دیا کسی کو. اب وہ تو اس کے پاس ہے، تو سال کے اینڈ پہ اسے 1,00,000 پہ 2,500 میں کیسے دوں؟ تو آپ لکھ لیں بس 2,500. پھر آپ دو سال بعد جب وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہے 1,00,000 کی، تو 2,500 اور 2,500 اکٹھے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز دیکھیے گا. پہلی قسم کے قرض کے متعلق دوسری رائے یہ ہے کہ قرض دینے والا اس کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرے. یہ رائے حضرت عثمان ابن عمر، جابر، امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام کی ہے. वो क्या दलील देते हैं, कर्ज की इस किस्म में मकरूज़ के इकरार और यानी अदायगी की इस्तेतात की वजह से कर्ज देने वाले की मलकियत मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि वो जब चाहे अपना कर्ज वापस लेकर इसमें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ रहे, यदि आप कहते हैं भाई मुझे वापस करना है तो कर्ज देने जिसने लिए वो कहते ले लो, आप मेरे पैसे आपके पास हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि रख ले, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता के एक हफ़्ते में ले लूँगी, तो फिर आप मुझे दे देंगी ना, तो वो मेरे ही हुए ना, बल्कि आप मेरे पैसों की हिफाजत कर रही हैं। तो ये मतलब है कि जिसने लिए वो कह रहे हैं हाँ मैंने देने हैं और मांगोगे तो दे दूंगा, तो फिर जाहिर बात है वो आपके ही पैसे हुए ना। देखिए इस तरह तो हम सबके पैसे बैंकों में अगर होंगे तो वो बैंक वाले ने रखे हुए, हमारे बैंकों ने भी तो असल में देखा जाए तो आप लोगों से उधार ही लिया हुआ है, पे चेक लोगों का सीधा बैंक में जाता है, आप क्या पूरी पे आप एक महीने में खर्च कर लेते हैं, जो स्पेशली औरतें काम करती हैं उनकी तो पड़े रहते होंगे ना, नहीं इस्तेमाल हो रहे, तो किसको मिल गए, बैंक को मिल गए। हाँ बैंक इतना अच्छा कर्ज़ा लेने वाला है कि आपको ये यकीन दिलाता है कि आप जब चाहेंगे लेने हम दे देंगे, लेकिन शरायत है ना, एक खास हद तक 20 के नोट होंगे, संडे को बंद होगा, और एक बहुत बड़ा बैंक भी है जो हमें क्या कहता है, मंजल लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, उस पे एतबार ही कोई नहीं, यानी दुनिया के बैंक पे हमें ज़्यादा एतबार है अल्लाह के अनलिमिटेड बैंक से, दुनिया का हर बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल लिमिटेड बैंक, अल्लाह का बैंक आखिरा बैंक अनलिमिटेड बैंक है। फिर इसमें ये तबसरा करते हैं कि इस राय की दलील ज़्यादा वज़नी और माकूल नज़र आती है, वल्लाहु आलम। इस सिलसिले में इमाम बहकी ने साहिब बिन यजीद के हवाले से उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत नकल की, आपने फ़रमाया इसकी यानी कर्ज़ की ज़कात अदा करो जब वो मालदार शख्स के ज़िम्मे हो। इमाम बहकी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास और इब्ने उमर से भी रिवायत नकल की, जो शख्स किसी को कर्ज़ दे और वो मकरूज़ सका हो, सका किसको कहते हैं, ऑथेंटिक स्ट्रॉन्ग, कि पता है कि ये पैसे वापस करेगा, तो इस पर हर साल इसकी ज़कात होगी। इमाम बहकी ने इब्ने अब्बास से नकल की कि इनके गायब माल कर्ज़ वगैरह की वजह से इसकी ज़कात के बारे में जब पूछा गया तो फरमाया गायब माल से इसी तरह ज़कात अदा करो जिस तरह के हाजिर माल से करते हो। इस साइल ने इनसे कहा इज़न यहलिकिल माल, इस तरह माल बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा दीन की बर्बादी से माल की बर्बादी अच्छी है, यानी ना तो मेरे पास वो पैसे हैं तो मैं ऊपर से ज़कात भी दूँ तो मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए, तो कह रहे हैं लेकिन दीन तो बर्बाद होने से बच गया ना। ठीक है चलिए, दूसरी किस्म का कर्ज़ क्या है, दूसरी किस्म ये है कि वो किसी नादार या कर्ज़ के अपने ज़िम्मे होने से इनकार करते, अब एक दे ही नहीं रहा, जिसको आप कहते हैं डूबा हुआ पैसा, स्टक मनी, या टाल मटोल करने वाले के ज़िम्मे, ऐसे कर्ज़ की ज़कात के बारे में दो राय हैं, एक ये कि इस पर वाजिब नहीं है, ये राय इमाम कतादा, इसहाक, अबू सौर और अहले इराक़ की है। दलील क्या देते हैं कि इस कर्ज़ से मुस्तफ़ीद होना कर्ज़ देने वाले के दायरे इस्तेताअत से बाहर है, यानी जब मिलने की उम्मीद ही कोई नहीं है तो वो उसमें से ज़कात कैसे देंगे। तबसरा, क्या ये कर्ज़ कर्ज़ देने वाले को वापस मिला है या नहीं, अगर नहीं मिला तो वाक़ियतन इससे फ़ायदा हासिल करने इसके लिए मुमकिन ना था, लेकिन अगर ये कर्ज़ वापस मिल गया तो वसूली वाले साल से इससे इस फ़ायदा उठाना कर्ज़ ख्वा के बस में था, लिहाजा इस साल का हुक्म गुज़श्ता सालों से मुख्तलिफ होना चाहिए, बाकी सालों के बरक्स इस साल की ज़कात फ़र्ज़ होनी चाहिए। बात वाज़ह, यानी आपको उम्मीद ही नहीं थी लेकिन बिलफर्ज़ मिल गया, तो जब मिल गया तो आखिरी साल का फिर ज़कात देते हैं। दूसरी राय है कि इस कर्ज़ पर अब कोई ज़कात ना होगी, अलबत्ता इसके हासिल हो जाने पर इसकी ज़कात देनी होगी, एक कॉल के मुताबिक सिर्फ एक साल की और दूसरे कॉल के मुताबिक गुज़श्ता सारे सालों की ज़कात अदा की जाएगी। ये राय हज़रत अली इब्ने अब्बास और दीगर आइमा कराम की है। दलील क्या है, सब सालों की ज़कात के वाजिब होने की दलील ये पेश की जाती है कि गुज़श्ता सब सालों में इसकी हालत एक जैसी रही, लिहाजा इस पर ज़कात के वाजिब होने और गैर वाजिब होने का हुक्म भी एक होना चाहिए। तबसरा, ऐसे कर्ज़ की हालत गुज़श्ता सब सालों में यकसा नहीं थी, जिस साल में वो कर्ज़ वसूल हुआ इसमें वो कर्ज़ देने वाले के एसेट्स में शामिल हो गई, राइट, इससे पहले सालों में तो वो इस असासे में शामिल नहीं थी, इसी फ़र्क की बिना पर गुज़श्ता सालों में से सिर्फ़ कर्ज़ की वसूली वाले साल ज़कात के वाजिब होने वाली बात ज़्यादा दुरुस्त नज़र आती है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत हसन, लैस, उज़ाई, मालिक और एक रिवायत में इमाम शाफ़ी की भी यही राय है। तो ख़ुलासा क्या निकला, गुफ्तगू का ख़ुलासा यह है कि कर्ज़ देने वाले पर दिए हुए कर्ज़ की ज़कात के वाजिब होने के बारे में उलमा की मुख्तलिफ़ राय हैं। सबसे राजे, राजे किसको कहते हैं, डोमिनेंट, यानी जिसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, वो क्या है कि अगर मकरूज़ अपने ज़िम्मे कर्ज़ का एतराफ़ करे और इसमें कर्ज़ की वापसी की ताकत हो, तो कर्ज़ देने वाला इस कर्ज़ की दीगर माल के साथ मिलाकर या तनख्वाह निसाब को पहुँचने पर हर साल ज़कात अदा करें। बात वाज़े, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कर्ज़ किसी नादार या कर्ज़ के अपने ज़िम्मे होने से इनकार करने वाले, टाला मटोल करने वाले शख्स पर हो, तो कर्ज़ देने वाला क्या करेगा, कर्ज़ देने वाला इस कर्ज़ की वसूली वाले साल सिर्फ़ एक साल की ज़कात अदा करे। और ये आप देखिए ना कि मोर जेन्युइन लग रही है ना बात, तो जिसकी चीज़ है उसी की चीज़ है, ज़िम्मेदारी भी उसकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे सबक का फिर ख़ुलासा क्या निकला, जब कर्ज़ दिया जाता है किसी को तो वो चीज़ होती उसकी है, चली दूसरे के हाथ में जाती है, उस चीज़ की नंबर एक ज़कात तो रहेगी क्योंकि वो माल मौजूद है ना, मकरूस दे ना कर्ज़ ख्वा दे, ये कहता है कि मैं तो नहीं फ़ायदा उठा रहा और मकरूस कहता है मेरी तो नहीं ना। तो आप इसको एक गाड़ी से समझिए, है गाड़ी किसी और की, आपने यूज़ के लिए ली, तो आप कहते हैं गैस तुम डालो क्योंकि गाड़ी तुम्हारी है, तो वो कहता है मैं क्यों डालूँ, तुम चलाओगे तुम डालो, वो कहता है मैं नहीं डालता गाड़ी तुम्हारी है, वो कहता है मैं क्यों डलवाऊँ मेरी नहीं, तो गाड़ी खड़ी रहेगी ना, ये मतलब है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसको चलानी है तो लगाएगा तो चलाएगा। दूसरी सूरत, कर्ज़ जिसने लिया है उसने तो अपनी ज़रूरत के लिए लिया है, तो वो ज़कात कैसे अदा करेगा, तो जिसकी चीज़ है बेसिकली वो ही कर्ज़ देगा। फिर जो कर्ज़ जो है वो दो किस्म का हमने पढ़ा, एक वो जिसके वापस मिलने की उम्मीद है और दूसरा जिसकी उम्मीद नहीं है। जिसकी उम्मीद है वो दे और अपने पैसे इर्द गिर्द उनसे दे दे, नहीं है तो जब एंड पे पूरा पैसा मिलेगा तो पिछले सालों का हिसाब करके दे दे। और दूसरी सूरत है कि जिसमें उम्मीद ही नहीं कि मिलेगा तो ना दे, लेकिन अगर बिलफर्ज मिल गया तो फिर उस साल की ज़कात देगा। आखिरी और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए कि हिट टॉपिक है, और वो क्या है, बैंक कार्ड्स और इनकी शरई हैसियत। ये कौन से बैंक कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स और फलां कार्ड्स, आइए देखते हैं। कर्ज़ के मतलब गुफ्तगू में यह कि माशरे में बैंक कार्ड्स के ज़रिए लेन देन की मुरवजा सूरत पर रोशनी डाली जाए, इसमें दो चीज़ें, बैंक कार्ड्स का तारुफ और बैंक कार्ड्स की शरई हैसियत। तारुफ क्या कि बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को बज़रिए कार्ड नकद रकम वसूल करने और ख़रीदारी की सहूलत फ्राहम करने की शक्लों में से तीन दर्ज हैं, अपने अकाउंट से रकम निकालने का कार्ड, इसको क्या कहते हैं, डेबिट, चार्ज कार्ड, और तीसरा कर्ज़ का कार्ड जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तीनों की शक्ल ज़रा सी फ़र्क है, आइए देखते हैं। अपने अकाउंट से रकम निकलवाने का कार्ड डेबिट कार्ड, ये कार्ड बैंक सिर्फ ऐसे लोगों को देता है जिनका बैंक में अकाउंट हो। बैंक ऐसे लोगों का अपने ही खातों यानी अपने जो अकाउंट्स होते हैं उसमें मौजूद रकम की हद तक रकम निकालने और कार्ड के ज़रिए मुतय्यना तिजारती इदारों से ख़रीदारी का हक देता है। बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों से इस कार्ड के इस्तेमाल का कोई मुआवजा नहीं लेता क्योंकि पैसे दिए मैंने ना, पैसे तो उनके ही पड़े में। जिन तिजारती इदारों से बैंक का ग्राहक इस कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करता है, बैंक फौरी तौर पर अपने ग्राहक के अकाउंट से इनके खातों में रकम मुंतकिल कर देता है। बैंक इन तिजारती इदारों को अदायगी करते वक्त कटौती करता है। बात वाजे ना, सिंपल है, ये तो हर दिन ही आप लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं। दूसरी किस्म के कार्ड कौन से हैं, चार्ज कार्ड। इस कार्ड के हसूल की खातिर बैंक में अकाउंट का होना शर्त नहीं है। इस कार्ड वाले को बैंक एक मुअय्यना हद तक मुतय्यना तिजारती इदारों से ख़रीदारी करने का इख्तियार देता है। मुतल्लिका तिजारती इदारों की जानिब से कार्ड वाले की ख़रीदारी के बिलों की वसूली पर बैंक इनकी फौरी अदायगी कर देता है। इन बिलों पर कार्ड वाले के दस्तखत होते हैं। बैंक तिजारती इदारों से बिलों पर एक मखसूस शरह से कटौती करता है यानी मनी लेता है। बैंक कार्ड वाले को ये सहूलत देता है कि वह एक महीना मुद्दत तक बिलों की रकम इजाफा के बगैर बैंक को अदा कर दे। मुकर्रर मुद्दत तक अदायगी ना होने की सूरत में बैंक कार्ड वाले मखसूस शरह से सूद वसूल करते हैं। ऐसे ही है ना, ये वही कार्ड है जिसकी वजह से आपका मेल मैन काफ़ी बिजी रहता है। मेरा लिए सबसे ज़्यादा मेल अमेरिका में रहते हुए वो फ्री कार्ड्स वालों की आती है। तो यानी आप देखिए कि हर थोड़े दिन बाद आपको किसी कंपनी की तरफ से आपके नाम का सजा हुआ कार्ड आ जाएगा, तो आप कहेंगे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कितना करते हैं। चलिए तीसरी और आखिरी किस्म, क्रेडिट कार्ड, कर्ज़ का कार्ड। इस कार्ड की अक्सर खसूसियात वही हैं जो चार्ज कार्ड की, यानी सेकंड एंड थर्ड काफ़ी मिलता है। अलबत्त दोनों में फ़र्क यह है कि इस कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करने वाले से बैंक बिल की अदायगी ही के दिन से अदा शुदा रकम पर मखसूस शरह से सूद वसूल करता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे होंगे कि आपको एक दिन भी मतलब रियायत नहीं मिलती कि एक महीने के बाद पे करना है, फ़ौरन चार्ज करते हैं। अब ये तो तीन किस्म की कार्डों का तारुफ था, अब आप देख लीजिए इनका शरई हुक्म क्या है, तीनों का अलग अलग। नंबर एक, अपने अकाउंट से रकम निकलवाने वाले कार्ड की शरई हैसियत, इस सूरत में कार्ड वाला बैंक में अपने खाते में मौजूद रकम की हदूद में रहते हुए ख़रीदारी करता है, बैंक इसके खाते से इसकी ख़रीदारी के बकदर रकम तिजारती इदारे के अकाउंट में मुंतकिल करता है, बैंक अपनी तरफ से तिजारती इदारे को कुछ नहीं देता। इस सूरत में बैंक और कार्ड वाले के दरमियान कर्ज का कोई मामला नहीं होता और ना ही बैंक इससे कुछ लेता है। बैंक तिजारती इदारों को अदायगी करते वक्त जो कटौती या कमीशन वसूल करता है, इसका भी सूद से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस सारे मामले में कर्ज ही नहीं तो सूद कैसे होगा। अलबत्त इस सिलसिले में ये बात ज़रूरी है कि कार्ड वाले का अकाउंट करंट हो और मुकम्मल तौर पर सूदी लेन देन से पाक हो। क्लियर है? ये ऐसे जैसे नोट है, आप नोट नहीं दे रहे, कार्ड दे देते हैं, उसमें तो आपके अपने ही पैसे जा रहे हैं ना, तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड, चार्ज कार्ड का शरई हुक्म, इस कार्ड को इस्तेमाल करने वाला मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद बैंक की तरफ से तिजारती इदारों को अदा करदा रकम पर सूद अदा करने का पाबंद होता है। जिस मामले में सूद आ जाए इसकी हुरमत और कबाहत में शक व शुबा की अदना गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। कुरान और सुन्नत की मुतअद्दद नसूस, नसूस नस से यानी एविडेंसेस में सूद की हुरमत और संगीनी को बयान किया गया। पाँच आयतें और हदीसें इस बारे में इन्होंने रखी है। सूदी लेन देन ईमान के मुनाफी है, यानी जहां सूद होगा वहां ईमान नहीं होगा। इसकी दलील सूरत बकरा की आयत नंबर 278, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, या अय्युल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वज़रु मा बकिय मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। अलामा अल हरारली कहते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि बिलाशुबा सूद और ईमान जमा नहीं होते। दूसरी दलील, सूद न छोड़ने वालों के लिए अल्लाह और रसूल का ऐलान जंग है। कुरान पाक ही में सूरत बकरा ही की आयत 279, फ़ैलम तफ़लू फ़ाज़नु बिहर्ब मिन अल्लाही व रसूलिही, और अगर तुमने बाकी मानदा सूद ना छोड़ा तो अल्लाह ताला और इनके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो। इमाम मालिक कहते हैं, मैंने सूद से बुरी कोई चीज़ नहीं देखी क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी बिना पर ऐलान जंग किया है। सोचिए ज़रा, फिर एक दिरहम सूद खाने का 36 यानी 36 टाइम्स ज़िना से ज़्यादा संगीन होना। इमाम अहमद ने अब्दुल्ला बिन हंजला से ये रिवायत नकल की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदमी का एक दिरहम सूद का जानते बूझते खाना 36 मरतबा जिना करने से ज़्यादा संगीन है। क्यों भला? देखिए, जिना में दो जिंदगी है ना, एक औरत और एक मर्द है। सूद सोसाइटी का नसूर है। जिना के नतीजे में एक नाजायज़ बच्चा पैदा होगा ना बिलफर्ज, तो सूद के ज़रिए से कितने नाजायज सिस्टम हो गए हैं, इस पे तो मैं बात करना नहीं चाह रही क्योंकि ये एक अलग मौजू है अपनी जगह पे। आप इंश्योरेंस ले लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड का ले लीजिए, आप घरों की कर्ज, यानी इस वक्त सिर्फ आप एक लिस्ट बना के अपने माशरों में देख लीजिए कि सूद से रेलेवेंट कितनी चीज़ें पैदा हो गई हर जगह। तो फिर यही दो चीज़ें आ गई ना, तो सूद से सोसाइटी के अंदर नाजायज़ जरासीम पैदा होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। फिर सबसे हल्के सूद का माँ के साथ निकाह करने की मानित होना। इब्ने माजा से रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, आपने फरमाया, सूद की 70 इकसाम है, इनमें से सबसे हल्की किस्म यह है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। और पांचवी, सूद का अंजाम तंग दस्ती है। इब्ने माजा ने अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत नकल की, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी सूद से ज़्यादा माल जमा नहीं करता बल्कि इसका अंजाम तंग दस्ती होता है, यानी एंड प्रोडक्ट ऑफ सूद इज़ गुरबत, बैंकरप्सी। और ये तो आपने पढ़ ही लिया, सुनी लिया, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं। क्या इन आयात और अहदीस आगही के बाद भी सच्चे ईमान वाला शख्स किसी भी सूदी मामले के करीब फटक सकता है? एक सवाल पैदा होता है यहाँ कि अगर कार्ड वाला मुकर्रा मुद्दत के अंदर ही बैंक को वाजिब उज़्ज़िमा रकम अदा कर दे और बैंक अदा करदा रकम से ज़ायद कुछ ना ले, तो फिर कार्ड का क्या हुक्म है, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं ना इस सूरत में। इस बारे में तीन बातें ये बयान करते हैं। पहली बात है, बाज़ बैंक ऐसे कार्ड्स के देने, इसकी तजदीद और गुमशुदगी की सूरत में नए कार्ड के जारी करने पर फ़ीस वसूल करते हैं। सवाल ये है कि कार्ड लेने वाला इन बातों का मुआवजा क्यों अदा करता है, यानी जब उसने उनको यूज़ नहीं करना या नहीं किया तो ये क्या है। जवाब वाज़ेह है, ताकि वो अपनी उधार ख़रीदारी के लिए बैंक से कर्ज़ हासिल कर सके, राइट। इस तरह बैंक कार्ड वाले से असल कर्ज़ के अलावा फ़ीस के नाम से इजाफा वसूल करता है, और शरीयत इस्लामी का वाज़ेह हुक्म है कि कर्ज़ की बिना पर कर्ज़ देने वाला मकरूज़ से कर्ज़ के अलावा जो कुछ भी लेता है वो सूद है, और जब ये सूद है तो इसका लेना देना हराम होगा, और सूद का नाम फ़ीस रखने से वो हलाल तो नहीं हो सकता, खिंजीर को बकरी कहने से तो वो हलाल नहीं हो सकता। बात क्लियर है। दूसरी चीज़ देखिएगा, बैंक तिजारती इदारे को कार्ड वाले की ख़रीद करदा अशिया के बिलों की मुकम्मल रकम अदा नहीं करता, बल्कि मखसूस शरह से कटौती करता है। मसलन अगर वो कार्ड से 100 रुपये वसूल करता है तो तिजारती इदारे को 98 रुपीज़ देता है, जिसको आप कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड की फ़ीस होती है, उसकी तरफ इशारा है। गौरतलब बात है कि बैंक हर 100 रुपयों में से 2 रुपये किस बिना पर वसूल करता है। सबब वाज़ह है कि बैंक तिजारती इदारे को आज 98 रुपये देकर कार्ड वाले से एक माह बाद 100 रुपये वसूल करता है। 2 रुपये दर हकीकत 98 रुपये एक माह की मुद्दत के लिए देने का मुआवजा रकम देकर दी हुई मुद्दत के बदले में हासिल करदा इजाफी रकम ही का नाम सूद है। बस तिजारती इदारे कार्ड वाले से ख़रीदे हुए सामान की हकीकी कीमत से कुछ ज़्यादा रकम के बिल पर दस्तखत करवाते हैं। मिसाल के तौर पर 98 रुपये का सामान देकर 100 रुपये के बिल पर दस्तखत करवाते हैं। इस तरह तिजारती इदारा तो अपना पूरा हक वसूल करता है, अलबत्ता कार्ड वाला 98 रुपये का सामान लेकर बैंक को 100 रुपये देने का पाबंद होता है। इसके इस इजाफे को बर्दाश्त करने का सबब यह है कि बैंक इसकी तरफ से ये रकम तिजारती इदारे को फौरन अदा करता है, और वो बैंक को कुछ मुद्दत के बाद अदा करता है, और मुद्दत के मुकाबले में इस इजाफे का नाम सूद है। देखिए, कुछ डायरेक्ट चीज़ें होती हैं ना, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। फिर तीसरी चीज़, चार्ज कार्ड के ज़रिए उधार ख़रीदारी की रकम की बैंक को मुकर्रर मुद्दत में वापसी नामुमकिन तो नहीं, अलबत्त मुश्किल ज़रूर है। इब्तदा में मुकर्रर मुद्दत के अंदर अदायगी करने वाले कितने ही लोग कुछ अरसे बाद पटरी से उतर जाते हैं और अदायगी में ताखीर करने की बिना पर सूद अदा करते हैं। इस तरह इस किस्म के कार्ड के इस्तेमाल के मुजर ये बात जो जिनका जिक्र हुआ, ये दोनों असबाब के साथ एक तीसरी बात ये भी है कि ये आम तौर पर कार्ड वाले को सरीख सूदी मामले तक पहुँचाने का ज़रिया बनता है। इस किस्म के कार्ड के नाजायज़ होने के लिए पहले 2 सबब काफ़ी हैं, और अगर वो 2 सबब फ़र्ज़ मुहाल ना भी हों तो एक मुसलमान को इस कार्ड के इस्तेमाल से दूर करने के लिए तनहा 3रा सबब भी कुछ कम अहम नहीं। क्लियर हुई है बात। कर्ज कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड, ये सबसे मशहूर नाम है ना। चार्ज कार्ड के शरई हुक्म के हवाले से बयान करदा पहली दोनों बातें कर्ज कार्ड में खुली तौर पर मौजूद हैं। तीसरी ख़राबी जिससे चार्ज कार्ड में बचना मुश्किल था, इस कार्ड के इस्तेमाल में यकीनी तौर पर मौजूद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने वाला ख़रीदारी के दिन ही से लिए हुए कर्ज पर सूद देने का पाबंद होता है। इस बिना पर यह कार्ड अव्वल ता आखिर बिला शुबा शक के और शुबे के हराम के ज़ुमरे में दाखिल होता है, यानी जिसमें पहले दिन से सूद आ गया वो तो सिरे से ख़राब हो गया ना। फिर एक छोटा सा नोट है, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड के मुतालिक गुफ्तगू करते वक्त इस हकीकत को पेश नज़र रखना चाहिए कि अक्लो दानिश और सही मुआशी हिकमत अमली का तकाजा यह कि इंसान अपनी चादर के बकदर पाँव फैलाए, अपने वसाइल से तजावुज़ करने वाला वक्ती तौर पर तो अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लेता है, लेकिन वह अपने आप को बेचैनी और परेशान हाली की राह पर डाल देता है। इसके अलावा शरई तौर पर आम हालात में सूदी लेन देन से पाक कर्ज लेना एक नापसंदीदा काम है। इस सिलसिले में हम पीछे बातें कर, यानी वैसे ही सूद कर्ज मना है, और जब सूद लग जाए तो फिर तो वो और बात है। नबी सल्लम कसरत से नमाज में कर्ज से अल्लाह ताला की पनाह तलब करते थे। कर्ज से अल्लाह ताला की पनाह का तलब करना अल्लाह के नबी की ऐसी दुआओं में शामिल था जिन्हें आप छोड़ा नहीं करते थे, यानी मुस्तकिल मांगते थे। फिर आपने कर्ज को जानों को खौफजदा करने वाला करार दिया। हो रहा रिकैप सारी बुक का, वही पॉइंट सारे शॉर्ट में लिख दिए। अल्लाह के नबी ने कर्ज़ लेने वाले को ख़ुदकुशी करना करार दिया। हज़रत उमर ने कर्ज़ की इब्तदा गम और इंतहा नादारी बताई। بس سلف نے کہا کہ قرض کی وجہ سے لاحق ہونے والے غم کی بنا پر ضائع ہونے والی عقل واپس نہیں پلٹتی۔ بعض علماء نے قرض کو عیب قرار دیا کہ وہ رات کو پریشانی، دن کو ذلت اور جانوں کو ڈرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں پھر آپ بتائیے کہ خوشی تو نہیں ہوگی نا۔ اس کے علاوہ علماء امت نے احادیث کی روشنی میں قرض لینے کے لیے کچھ شرائط کی موجودگی کو ضروری قرار دیا، جن میں یہ کہ قرض لینے کا معقول اور جائز سبب موجود ہو۔ اب یہ سارے رول جو پوری بک میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے، اس کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ چارج کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا فلسفہ ان سب باتوں کے کلی طور پر برعکس ہے۔ کارڈ جاری کرنے والے بینک کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے تیار کردہ قرض کے سنہری پنجرے میں خوب اچھی طرح پھنس جائیں، تاکہ وہ لمبی مدت تک ان کا خون چوستے رہیں اور کارڈوں والے نہ جائے ماندن نہ پائے ماندن۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں۔ اس کی عبرتناک تصویر پیش کرتے ہیں یہ کہ نہ تو اس سنہری پنجرے کے اندر رہتے ہوئے سکون میسر ہے، نہ اسے نکلنا کچھ آسان ہو۔ اب آپ سوچیے کہ آج جو کلچر ہے وہ کیا ہے؟ بینک کرپسیز دیکھیے، اور کروڑوں کے گھروں میں لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں $10 بھی نہیں ہے۔ دو دن پہلے ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا گھر ہے اور ان کے پاس، وہ یعنی کہ نان مسلم تھے، تو انہوں نے ان سے ادھار مانگا، تو انہوں نے حیرانگی ہوئی، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں ٹیکسی لینی ہے دینی ہے کیا۔ تو اب یہ ایک واقعہ دیکھ سنیے گا آپ بھی خود بھی، کہ جس سے آپ کو اس سوسائٹی کی پکچر نظر آ جائے گی کہ لیونگ بیونڈ دا مینس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں 27 جنوری 2008 کے نوائے وقت سنڈے ایڈیشن میں ایک فیچر جس کا ٹاپک کریڈٹ کارڈز نے کروڑ پتی کو بھیکاری بنا دیا، یعنی ملینیرین جو تھا وہ بیگر بن گیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن کا ہر دل عزیز پیشکار صحافی ایڈ مچل اپنے بارے میں کہتا ہے، ہماری زندگی بڑے مزے اور بے فکری سے گزر رہی تھی، میں نے تقریباً پوری دنیا کا سفر کیا، وہ اور اس کا کنبہ ان نہایت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے حوض کے علاقے میں واقع گھر کی مالیت £500,000 تھی۔ مچل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی بربادی میں شراب نوشی کا عمل بھی جاری ہے، لیکن بنیادی وجہ کریڈٹ کارڈز پر آسانی سے قرضہ حاصل کرنے کی سہولت تھی۔ نوکری سے جواب ملنے کے بعد اس کا تمام انحصار کریڈٹ کارڈوں پر ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہر چیز قرضے میں ڈوب گئی۔ میرے اوپر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ میرے پاس 25 کریڈٹ کارڈز تھے۔ لوگوں کی جیبیں کس سے بھاری ہوتی ہیں؟ پاکستان میں تو نوٹوں سے دیکھی ہیں، لیکن جہاں میرا حال ہے کارڈوں سے ہوتی ہیں۔ میرے ماضی کے حالات اور آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نئے کریڈٹ کارڈز حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، اور میں ایک کارڈ کا قرضہ دوسرے کارڈ سے ادا کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ جب بینک میں میری تنخواہ کا چیک جانا بند ہو گیا، تو تمام قرض خواہوں نے ایک دم میرے گھر پر یلغار کر دی، یعنی سرنڈر کیا مجھے گھر کو۔ £16,000 کا قرضہ ایک کارڈ پر تھا، £16,000 کتنے ڈالر ہو گئے؟ آلموسٹ 20+ ہوں گے، 22، اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید۔ جی، ہالینکس اور بارکلے بینکوں کے کارڈوں پر £30,000 واجب الادا تھے، 30,000۔ ایک کمپنی نے مجھے نوٹس بھیجا کہ میں ان کے قرضے میں سے صرف £2,000 ادا کر دوں، لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، 2,000 کہاں سے آتا، کہاں سے ادا کرتا۔ مالی پریشانیوں کے نتیجے میں گھر میں تناؤ اور بیوی سے لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ آخر 2 سال قبل 25 سالہ ازدواجی زندگی طلاق پر ختم ہو گئی۔ جب ہماری علیحدگی ہوئی تو تمام قرضہ میرے ہی نام پر تھا، نتیجتاً مجھے اپنا گھر فروخت کرنا پڑا۔ سابقہ بیوی نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کر لی، اور مجھے پہلی رات قریبی پارک کے بینچ پر سو کر گزارنی پڑی۔ اگلا ایک سال اس نے مختلف دوستوں کے گھروں میں صوفوں پر سوتے ہوئے گزارا، لیکن دوستوں پر ہمیشہ بوجھ بننا نہیں چاہتا تھا۔ گزشتہ 9 ماہ سے وہ انتہائی تلخ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا نیا گھر پارک کا بینچ ہے، اس کے دن کا بڑا حصہ کام کی تلاش یا لائبریری کے چکر لگانے میں گزرتا۔ مچل آخر میں کہتا ہے کہ اب تک کا یہ عام تاثر یہ رہا ہے کہ بے گھر افراد پیشہ ور بھیکاری، کام چور اور ہڑ حرام لوگ ہیں، لیکن اب یہ تاثر درست نہیں رہا۔ 21ویں صدی میں بے گھر افراد کی اکثریت میرے جیسے سفید پوش لوگوں پر مشتمل ہوگی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگلے دور میں ملینیرین لوگ وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیونکہ بینک اور قرضہ دینے والے دوسرے ادارے جس طرح آسان شرائط پر لوگوں کو کریڈٹ کارڈز کے جال میں پھانسنے کی مہم چلا رہے ہیں، اس سے یقیناً میرے جیسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اس جال میں پھنسنے سے پہلے वॉर्न करना चाहता हूँ कि वो मेरे हशर को सामने रखते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आप सोचते होंगे हर वक्त ऊंचाई पर उड़ने वाला एक शख्स अचानक पार्क के नंगे और ठंडे बेंच पर कैसे आन पड़ा, लेकिन आप यकीन करें ये बेंच आप में से भी किसी का मुकद्दर बन सकता है। और मज़े की बात देखिए कि ये कोई मुस्लिम शख्स नहीं है, नॉन मुस्लिम शख्स है। तो ये तो एक कहानी है ना। आप ज़रा किसी कार्ड कंपनी वाले या बैंकों वालों से कहें ज़रा हमें रिपोर्ट तो दे दें, हर महीने कितने लोग बैंक करप्ट होते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वही बात है कि ख्वाहिशात को पीछे जाने लगा गिरद हवा, हावियस जन्म को कहते हैं जिसमें ख्वाहिश परस लोग गिराए जाएंगे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों से बचा के रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया, आपको फ़ायदा हुआ इस टॉपिक से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका होमवर्क क्या है, कैन पे बुक में खुलासा है किताब का, इसको पढ़ लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसान करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही वअस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।